इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर। परमेश्वर को बेचे गए व्यवस्था विवरण प्रार्थना करें। पिता, एक तरफ हम आपको देखना नहीं चाहते, हम विश्वास करना चाहते हैं। हम वो सारी आशीष चाहते हैं जिसका आपने हमसे वायदा किया है। धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम आपसे अपने विश्वास को लाएं और यह समझ लें कि आप हैं जो आप कहते हैं, आप हैं, आप हैं, आप जो करेंगे, आप जो कहते हैं कि आप करेंगे। परंतु पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर काम करें। आप अपने हाथ और मुख को अनुग्रह के साधन होने के, हम अपने हाथ, परंतु पिता हम चाहते हैं कि आप हमारे अंदर काम करें। हम अपने दिल, हाथ और मुख को अनुग्रह के साधन होने के लिए खोलते हैं, उस परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए जो सब लोगों को आशीष देना चाहता है। अपनी उपस्थिति में अपने पुत्र से और स्वर्गीय अनंतता से पिता होने पाएं कि हम उस तरह के लोग बन सकें। आमीन। पुराने नियम की चौथी किताब गिनती है और गिनती की किताब इसराइलियों के सीने पर्वत छोड़ने के बारे में बात करती है। उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई थी, उन्हें नियम दिए गए और लेवे व्यवस्था में उन्हें बलि चढ़ाने के तरीके भी बताए गए। और वे उत्तर दिशा में से होकर वायदे के देश में पहुंचते हैं। वे जासूसों के रूप में उस देश को परखने के लिए भेजे गए जो देश परमेश्वर उन्हें देने वाला है। और जब वे वापिस आए तो उन्होंने अपनी सहमति जताई कि वो देश सचमुच महादेश है जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। परंतु उनमें से 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर उन्हें वो देश देने की ताकत रखता है। उन्होंने दूसरे लोगों को भी मनवाना चाहा कि वे इस बात पर विश्वास ना करें। यह एक चकित कर देने वाली बात है। यह वो लोग हैं जिन्होंने लाल समुन्द्र को 2 भाग होता हुआ देखा है। यह वे लोग हैं जिन्होंने हर सवेर को मन्ना गिरता देखा है। यह वही लोग हैं जिन्होंने मिस्रियों की लूटपाट होती देखी है। परंतु अभी भी वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि परमेश्वर उन्हें उस देश को देने की ताकत रखता है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सजा दी और उन्हें 40 साल के लिए उजाड़ में भेज दिया कि वह उस उजाड़ में भटकते रहे और उनके बालिग पुरुष मरते रहे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। यह गिनती की पुस्तक है। अविश्वास के लिए सजा। व्यवस्था विवरण 5वीं पुस्तक है जो कहानी को आगे लेकर चलती है। परंतु 40 साल भटकने के बाद इसराइल की संतान एक बार फिर से उस वायदे के देश की सीमा के पास पहुंचते हैं और व्यवस्था विवरण में मूसा निर्गमन, गिनती और लेवे व्यवस्था की शिक्षा को संक्षेप में बताता है। और जैसे आप अवस्था विवरण को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 2 अंगीकारों के बारे में मूसा शिक्षा देता है। अगर आप अवस्था विवरण से परिचित नहीं हैं तो आपको अध्याय 4-9 और 11 पढ़ने के लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं, जो कि इस पुस्तक का हृदय बिंदु है। परंतु जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप 2 वास्तविकताओं को पाते हैं जो कि इस पुस्तक में सिखाई गई है। उन्हें संक्षेप में अध्याय 6-4 में दिया गया है। उनमें से पहली एक प्रतिज्ञा है जो अकेश्वरवाद में विश्वास को दिखाती है। एक विश्वास के एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक की एक वास्तविकता है कि एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है और जिसने अपने आप को जलती जाड़ी में मूसा के सामने प्रकट किया। और फिर से मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप नए हैं, जब कभी भी आप शब्द प्रभु बड़े अक्षरों में देखें तो अनुवादक का अपना तरीका है आपको बताने का कि वो यहोवा शब्द का अनुवाद कर रहा है। पट्टी के अंत में अंतराल, हम अक्सर भूल जाते हैं, परंतु प्राचीन संसार में अकेश्वरवाद का दावा करना अनोखा था। बाकी सबके पास देवकुल थे और वे बहुत देववादी थे। वे बहुत से देवताओं की आराधना करते थे और उनमें और वे भी कर्मानुसार थे। हो सकता है कि उनमें प्रधान देवता भी हों, परंतु फिर भी बहुत से देवता हैं और कुछ वंशी देवता भी हैं। परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक साफ साफ कहती है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 4 पद आइए सब मिलकर पढ़ें। हे इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इसे आज शेमा कहा जाता है। यह एक पुणे यहूदी की रोजाना प्रार्थना का भाग है, परंतु व्यवस्था विवरण भी करते हैं, है ना। जब यीशु ने सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में पूछा, जो कि एक प्रतिज्ञा है, एक परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है। यहोवा एक जातिवाद का संग्रह नहीं है, जैसे कनानियों का बाल और अशेरा थी और मिस्रियों का साइरस और क्या पता कितने और, परंतु इसराइल की संतान के लिए परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सिर्फ एक ही परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम प्रभु है। बाकी सब देवते या तो दानव है या कुछ भी नहीं है। जैसे मूसा सिखाता है, बहुत जगह लिखा है, कृपया अध्याय 4 पर मूसा बता रहा है कि क्या क्या अदृश्य चीजें परमेश्वर ने की हैं इसराइल राज्य को बनाने के लिए। और फिर 35 पद पर वह अंत करता है, वह यह कहता है कि यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई और अपने वचन के आग और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। सीने पर्वत की कहानी। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र में से इसलिए निकाल आया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए, उसे तेरा निज बाग कर दे जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले कि अपने मन में सोच भी रख के ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। यह एक प्रतिज्ञा है जो कि तार्किक और धर्मज्ञानी तरीके से मूर्ति पूजा की मनाही बताती है। एक हाथ एक प्रतिज्ञा है कि एक ही परमेश्वर है जो कि यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि दूसरे हाथ किसी मूर्ति की आराधना करना गलत है। एक बार फिर अध्याय 4 की ओर ध्यान दें और 15 पद से शुरू करें। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पंक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तू आकाश की और आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर से सब देश वालों के लिए रखा है। क्योंकि एक ही परमेश्वर है, हमें किसी और देवता की आराधना नहीं करनी चाहिए। सृष्टि की गई चीजों को हमारी वफादारी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारी आराधना में भी कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। अकेश्वरवाद और उसका समांतर मूर्ति पूजा से मनाही। व्यवस्था विवरण हमें इस समय दो प्रश्नों को पूछ रही है, ऐसे प्रश्न जिनको सुन के उनका उत्तर देना आसान लगता है, परंतु आज मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप गहराई से सोचें और अपना उत्तर दें जो व्यवस्था विवरण हमसे पूछ रही है। एक प्रश्न जो व्यवस्था हमसे पूछ रही है यह है कि क्या आप अकेश्वरवादी हैं या बहुदेववादी हैं? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो यहोवा है, जो यीशु है, या आप किसी और देवगण पर विश्वास करते हैं, जहां आप किसी और देवता समूह पर जिनमें यीशु प्रधान देवता है परंतु देवताओं का देवतागण? एक अच्छा प्रश्न जो कि पूछना चाहिए एक बहुदेववादी समाज जिनमें हम जीते हैं। मैं शब्द प्रभु की एक हल्की सी अलग परिभाषा की ओर संकेत करना चाहता हूँ ताकि हम उस प्रश्न पे ध्यान दे सकें। प्रभु और प्रभुओं की परिभाषा मेरे शब्दों में जिस किसी भी प्रभु और प्रभुओं की परिभाषा मेरे शब्दों में जिसकी भी हम आराधना करते हैं हमारे प्रभु हैं, जिस किसी भी हम आराधना करते हैं। परमेश्वर वो है जिसमें हम परम आनंद को पाते हैं, परमेश्वर से हम तम आनंद को पाते हैं, परमेश्वर को हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। मैं एक व्यवहारिक स्तर पर सोचता हूँ कि परमेश्वर की परिभाषा यह है कि जिससे आप अपना पैसा और समय खर्च करते हैं। अगर आप इस परिभाषा को स्वीकार करना चाहते हैं, हम व्यवस्था विवरण का प्रश्न दोबारा दोहराते हैं। क्या मैं अकेश्वरवादी? हफ्ते में मैंने एक आदमी की कहानी को सुना जो जहां नहीं रहता परंतु काम करने का आदि था। वो रात को 9 बजे से पहले घर नहीं जाता था। वो कम से कम 5 या 6 दिन सप्ताह में काम करता था। वो एक आधा घंटे के लिए कलीसिया जाता था। जो पल बचते थे वह और उसकी पत्नी एक अच्छा घर ढूंढते। सप्ताह महीने और साल 8 से 9 बीत गए और एक आधा घंटा रविवार सुबह और हर क्षण अच्छे घर की तलाश रहती थी। क्या वो आदमी अकेश्वरवादी है? उसके परमेश्वर का क्या नाम है? मैं कोई न्यायी नहीं हूँ, जय कोई मेरा निश्चय नहीं है, परंतु जब हम अपने जीने के तरीकों को देखते हैं तब हम सचमुच चकित हो जाते हैं। क्या आप नहीं जाते कि आप नहीं होते? अगर हर एक क्षण आपके दम के संग्रह है और उसके एक अच्छा घर खरीदने में लगाएं तो यह एक अच्छा घर है। मैंने पिछले सप्ताह देखा, आप बाहर जाकर सागर को देख सकते हैं, आप कैटलीना को देख सकते हैं। अगर आप दक्षिण कैलिफोर्निया में बहुत सुंदर घर छोटे बाकी घरों के मामले में, परंतु कौन है उस इंसान का गुरु? परंतु उस आदमी के प्रभु का नाम क्या है? क्या वो अकेश्वरवादी है जहाँ वो बहुदेववादी है? परमेश्वर है जिससे हम उसकी शक्ति के और उसके अंदर परम आनंद को पाते हैं। परमेश्वर हमारा आनंद है। परमेश्वर वो है जिसका मूल्य हम जानते हैं। क्या मैं अकेश्वरवादी हूँ या बहुदेववादी? एक और प्रश्न है जो व्यवस्था विवरण हमसे पूछना चाहती है जो कि पहले के समान है, जो कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए, और वह है क्या हम मूर्ति पूजा करते हैं? पर बहुदेववादी से अगर आप पूछेंगे तो वह कहेगा हाँ हम मूर्ति पूजा करते हैं। पर क्या हम मूर्ति पूजा करते हैं? क्या आप जानते हैं? कृपया ध्यान दें कि मूर्तियां सिर्फ लकड़ी और पत्थर पर बने चित्र ही नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुतों ने यह सुना होगा अपने बचपन में, पर यह ही मूर्ति नहीं। मूर्ति वह हर चीज है जो परमेश्वर की जगह लेती है। जो भाग हमने पढ़ा वो व्यवस्था विवरण 4 में है, जो कि रचना और रची गई किसी भी वस्तु की आराधना करने को कहता है। व्यवस्था विवरण 4 मूर्ति पूजा की मनाही करता है, और मैं हमारी बनाई हुई मूर्तियों का विवरण देना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो लकड़ी की ही बनी हो सकता है कि वो कोई नदी के किनारे बना कोई कमरा हो, या हमारे पास कांच से बनी मूर्तियों भी हो सकती है। हो सकता है हमारे पास कुछ बड़ी किश्ती जैसा कुछ हो सकता है हमारी मूर्तियां चमड़े की बनी हो। मैंने इसके बारे में सोचा जब मैं कल रात बास्केटबॉल देख रहा था। एक मेरे मित्र ने कहा कि कनानी लोग बाल की आराधना करते थे, पर हमारी संस्कृति बाल की आराधना करती है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों की मूर्तियां मांस और हड्डियों की बनी हो। जब हम अपने आप की आराधना करते हैं, जब हम अपने आप को मनोरंजन, आराम और इस दुनिया के प्रभु को दे देते हैं, जब हम अपने आप से संतुष्ट हो जाते हैं। कल मुझे अच्छा लगा जब मैं टेलीविजन पर एक स्लैम डंक प्रतियोगिता देख रहा था, तो मैंने देखा कि कैसे इंसान और लड़ाके लोगों के पीछे लोग थे। क्या यह हमारी मूर्तियां नहीं है? नहीं तो मेरा मन आज ऑल स्टार को देखने का है, और बाद में मैं 6 बजे वाली प्रार्थना में आ पाऊंगा। इस तरह से हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल के साथ करते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सपना देख सकते हैं, और हमारे नाश का कारण भी वह हैं। वो हमारे अंदर प्रभुता करने लगते हैं और हम मूर्ति पूजक बन जाते हैं। और यह भी मायने नहीं रखता चाहे आप प्रभु यीशु को सबसे ऊपर रखो, क्या सही है? व्यवस्था विवरण परमेश्वर को मूर्ति पूजा का विरोधी बताती है, और आज भी उतना ही जरूरी है जितना यह 3500 साल पहले था। आज सुबह के समय में मेरी चिंता जो दोबारे है और जो आपके दिमाग में बनी हुई है, आप पास्टर फिर से यही कह रहा है, यह सच नहीं है कि मुझे नदी के किनारे जाना अच्छा लगता है। मैं ऐसी ही जगह पला बड़ा हूँ, जब तक कि मैं नदी के बीच में जाकर तैर ना लूँ मुझे आराम नहीं मिलता। मुझे बर्फ पर चलना पसंद है, मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मैंने अपने शरीर को बास्केटबॉल खेलने के लिए तैयार किया है, और यह सब चीजों का मैं आनंद उठाता हूँ। पर यह चीजों में अंदरूनी आनंद का स्रोत नहीं है। यह चीजें मुझे नाश कर देंगी। जब मैं किसी बास्केटबॉल के कोच को देखता हूँ तो उसकी जगह मैं अपने आप को देखता हूँ। क्या हम बहुदेववादी हैं या अकेश्वरवादी हैं? नए जमाने में हमारी मूर्तियां क्या हैं? मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए नहीं दे सकता, सिर्फ आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। परंतु यह भी व्यवस्था विवरण के पहले 2 सिद्धांत हैं कि एक ही परमेश्वर है और एक ही स्रोत है जिससे हमें आनंद मिलता है। परंतु एक और शिक्षा दी गई है व्यवस्था में, जो कि शेमा से आती है। व्यवस्था विवरण 6:4 और बहुत सारी जगहें और भी हैं। एक और शिक्षा है जो बताती है कि सिर्फ परमेश्वर के भक्त बने रहो। आज की आधुनिक देसी भाषा में परमेश्वर को बेचे गए। व्यवस्था विवरण 6 में हम दोबारा से जाएंगे। हे इसराइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। कृपया मेरे साथ पढ़ें 5 आयत। अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे हृदय और अपने सारे मन और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम रख। यह एक भाषा है परमेश्वर के सामने पूरी तरह से समर्पित करने के लिए। और परमेश्वर को बेचे गए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मूसा आगे बढ़ा, जैसे स्टीव ने पहले पढ़ा कि मूसा आगे बढ़ा, जैसे पहले पढ़ा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के नियमों को जानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना। इसलिए हमें पता दिखाएं, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो कि वास्तविक है, और यह धर्म व ज्ञान का निष्कर्ष है। हमें सिर्फ उसकी ही आराधना करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रचार में मेरा मुख्य केंद्र क्या है, यह किताब पुराने नियम के विषय धर्म ज्ञान है। यह एक महान किताब है। पौलुस शेमा के 172 पेज पर हमें इसके बारे में लिखता है। मेरी तरफ की शिक्षा बाहर आ रही है। व्यवस्था विवरण को मैं यहोवा की आज्ञाओं में आज्ञाकारिता जैसे दी गई है, वैसे ही कोई भी उसके वचनों में भी कोई आज्ञा बदलने वाली नहीं है। इसमें इस तरीके से नहीं बोल सकता कि जैसे पौलुस ने बोला। हमारी सोर कथन यह है कि हम लोग परमेश्वर का पीछा करते हैं, ना कि आवारा घूमते हैं। हम ऐसे लोग नहीं जो केवल रविवार को ही पकड़ते हैं ताकि सोमवार को उसे पीछे कर दे, परंतु हम परमेश्वर के निर्धारित और चुने हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, और जो कि हमारा अनुसरण करता है। हमारा मिशन हमें बताता है कि हम पूरी तरह से समर्पित चेले हैं, केवल समय बिताने के लिए नहीं। यह वे है कि जो मैं अपने प्रचार के इस लेख से बहुत दूर चला जाता हूँ, जहाँ पर कम से कम 4 सच के बारे में पढ़ना चाहिए कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। दूसरा, कि हमें उससे प्रेम रखना चाहिए, लेकिन हमारे प्रेम में आज्ञाकारिता का होना जरूरी है। याद रखेंगे, यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। कृपा दोनों अध्याय लिख लें, यूहन्ना 14 और व्यवस्था विवरण 6:4। आपके पास एक अच्छा अनुभव होगा प्रेम का, जो कि हमारे अंदर की आज्ञाकारिता से शुरू होता है। यह बहुत ही आसान है, यह मेरा अहम पहलू है जब मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा हूँ। जब तुम पवित्रता के बारे में बात करते हो तो जान लो कि पवित्रता हमेशा मायने रखती है। हमारी आज्ञाकारिता और परमेश्वर का वचन मानने के लिए वचन हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सब बातें बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यह बातें हैं नहीं, यह लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ धार्मिक काम करने चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, वो नहीं करना, यही सब कुछ है। शायद मजबूत शब्द यह है कि लेकिन मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं कि यह प्रेम ही है जो मेरे जीवन को आज्ञाकारी बनाता है। बिना हृदय के मैं एक ठंडे विधि विधाता की तरह हूं। इसका मतलब यह नहीं कि व्यवस्था किस बारे में है, और ना ही यह कि पुराना नियम किस बारे में है, और ना ही यह कि पुराना नियम किस बारे में है, ना ही कि नया नियम किस बारे में है, परंतु पूरी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और चौथी आज्ञा के अनुसार अपने प्रेमी हृदय से प्रेम और डेल दे, या दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन तीसरी बात, सारी बातों में आज्ञाकारिता होना चाहिए, पूरे हृदय से, पूरे प्राण और पूरी शक्ति के साथ। व्यवस्था विवरण हमें इसी बात के लिए बताती है। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण 10 की 12 और आगे भी पढ़कर देखें। मूसा लिखता है, लेकिन अब इसराइल परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर का भय मानो और मेरी सारी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसे अपने हृदय पर लिख लो। ऐसा ही हम नए नियम में भी पढ़ते हैं। मत्ती 8:28 यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो, यदि तुम एक मसीही बनना चाहते हो, तो अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और हर रोज ऐसे चलो जैसे कि क्रूसित किए जा रहे हैं। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ। दुनिया के पास एक ही चारा है कि वो परमेश्वर को खंडों में बांट देते हैं या नहीं, यह कह दें कि ठीक है परमेश्वर, मैं तुझे अपने नए जीवन का हिस्सा दूंगा। यह मूसा के दिनों में, कैलिफोर्निया और स्पेकन के दिनों में भी सच है। यह एक छोटा सा भाग मेरे जीवन का ले लेने से और कहने की तरह है, ठीक है परमेश्वर, यह आपका है, मुझे किसी तरह मेरे नर्क से छुटकारा मिल गया है, लेकिन मेरी बाकी की जिंदगी को ना छूना, वो ही करना जो मैं करना चाहता हूँ। यह दो राजाओं की कल्पना है जिसे कई बार हम करते हैं। यह एक विचार है कि हम रविवार सुबह परमेश्वर को खंडों में बांट सकते हैं और हमारे दुनियावी जीवन में भी, परंतु मैं अश्लील चित्रों में फंसा हूंगा, असंगति है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे दुनियावी जीवन में मैं अच्छा दिखता हूं, परंतु विचार है कि मैं परमेश्वर को खंडों में बांट सकता हूं। परंतु क्या आप जानते हैं यीशु ही सब चीजों का परमेश्वर है, या है या है ही नहीं? यह बहुत ही आसान है। या तो यीशु सबका परमेश्वर है या वो प्रभु है ही नहीं। जहां वो सब कुछ है, जहां वो कुछ भी नहीं है। हम उसे प्रेम करने के लिए बुलाए गए हैं, पूरे दिल से, आत्मा से, सारी शक्ति से, क्योंकि वह योग्य है। जब हम अगले बिंदु की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने इच्छा तो जाहिर किया है, जैसे कि व्यवस्था विवरण 6 में परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर करता है। हम उन्हें परमेश्वर की आज्ञा कहते हैं, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, आप उसे क्या कहते हैं, यह कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा प्रेम के लिए, हमारे समर्पित प्रेम के लिए जानता है कि संसार में कैसे उंडेला जाए। क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि किसी से प्रेम करना लेकिन उसे बता ना पाना कैसे बताएं? यह एक अनोखा मालूम पड़ता है। मैंने इस सप्ताह एक दंपति के बारे में सुना है। मैं बताना चाहता हूं कि वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन वास्तव में उनमें एक प्रेम को बरना चाहता था। वे खिड़की से फर्नीचर फेंक रहे थे। वे नहीं जानते थे कि अपने प्रेम को कैसे जाहिर किया जाए, जाने के वे नहीं जानते थे। वे नहीं जानते कैसे बात की जाए। देखिए, वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है, परंतु वे सोचते थे कि इस जुनून और प्रेम के बारे में मैंने अपने खिड़की से सब कुछ देखा। क्या तुम किसी को जानते हो, किसी को प्यार करना और उसे जाहिर ना कर पाना? इसे दुष्क्रिया कहते हैं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह में, हमारे अच्छा बोलने से, कैसे हम अपने प्रेम को हर दिन कैसे बाहर निकालते हैं, उसे आज्ञा दी और सही और गलत बताया। परंतु यह परमेश्वर का वरदान है जो तुम्हें सब कुछ देता है, जो कुछ भी है, क्योंकि सिर्फ एक परमेश्वर है, क्योंकि उसने हर दिन हम अपने दिल की बातें हम उसके सामने खोलते हैं, ना कि रविवार की सुबह को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब में रुचिदायक बात कौन सी है? जब आप शेमा की तरफ देखते हैं, व्यवस्था विवरण 6:4-5, इसमें रुचिदायक बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें आशीष दे। विवरण 30:8 में से शुरू करके देखें, मूसा जहां पर पापों की क्षमा और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में बताता है कि पापों की क्षमा हमारे लिए एक उपहार है। अब 8 आयत में देखेंगे, और तू फिरेगा और उसकी सुनेगा और इन सभी आज्ञाओं को मानेगा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ। परमेश्वर तुझे तेरे हाथों के काम में बहुतायत से आशीष देगा, वह तेरे गर्भ के फल को, तेरे पशुओं के फल को, तेरी भूमि की उपज को, क्योंकि परमेश्वर दोबारा से वह अपनी बरकतों को तुझ पर उंडेलेगा जैसे कि उसने तेरे बाप दादों के ऊपर उंडेली थी। क्यों ना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से उन्हें मिलती थी। परमेश्वर की इच्छा आशीष देने की या ना के शाप देने की। मैं जानता हूं सेहत और धन के सुसमाचार ने इस शिक्षा को घटा दिया है। हम परमेश्वर को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप उस मशीन में केवल पैसे डालें और परमेश्वर आपको आशीष देगा जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके तरीके से जब आप चाहते हैं। यह एक अरुचिकर बात है, परंतु यह सच है कि परमेश्वर की इच्छा अपने बच्चों को आशीष देने की है। अपनी आशीषों से अपने समय पर व्यवस्था विवरण हमें पूछती है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। कि चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं जहां काले हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ते हैं, विवाहित जहां अविवाहित हैं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीषें दे? और क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में आए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके चर्च पर आए? तो उसके लिए परमेश्वर को खंडों में डाल देना अच्छा तरीका नहीं है, और अपने आप को सांसारिक चीजों से गीला करना, और ना ही सुसमाचार को कमजोर समझना और उसे मशीन की तरह लेना। आशीष पाने का रास्ता मेरी ओर से आप में से हर एक जन के लिए, जैसे कि हम एक कलीसिया हैं, हमारे लिए एक ही रास्ता है कि यहोवा को अपना परमेश्वर बनाना और उसे एक और सिर्फ एक बनाना, और उसे अपने सारे दिल, आत्मा और शक्ति से प्रेम करना और उसके आज्ञाकारी बने रहना। और जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, हर महीना हर पल हम उसकी आज्ञा मानने में आनंदित रहें, तब वो अपनी आशीषें हमारे ऊपर बौछार करेगा। और यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक का हमसे वायदा है, यह उसकी आशीष होगी। अपने समय और तरीके के अनुसार हो सकता है कि वह हमें दुखों से आशीषित करे, हो सकता है कि वह हमें संपत्ति से आशीषित करे। मैं नहीं जानता, यह मेरा काम नहीं है कि मैं जानूं, परंतु मैं जानता हूं कि आशीष पाने का रास्ता शेमा है। व्यवस्था विवरण 6:4-5 और अंत में थोड़ी ऊंची आवाज से मैं व्यवस्था विवरण को पढ़ना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर इसे पढ़ें। आप कृपया मेरे साथ खड़े हो जाइए। आइए हम पढ़ें और सुने कि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर एक है, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और शक्ति से प्रेम करूंगा। प्रार्थना करें। पिताजी, मेरी प्रार्थना है कि आज जो लोग इस कमरे में मौजूद हैं उनकी धीरज को आप बढ़ाएं, क्योंकि यह आपके बच्चे हैं।